नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का लक्ष्य अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस भगदड़ मामले में 6 अधिकारियों को निलंबित किया। बिहार के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में मध्य, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। पेरिस ओलंपिक में गगन नारंग भारतीय दल के मिशन प्रमुख पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे और महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा तथा अंतिम T20 मैच आज शाम चेन्नई में खेला जाएगा। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। रूस में मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी बार सरकार गठन के बाद प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ ये उनकी पहली बातचीत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे 3 गुना ज्यादा ताकत के साथ काम करेंगे।
मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा, 3 गुनी रफ्तार से काम करूंगा। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व को डिजिटल लेनदेन का सबसे भरोसेमंद मॉडल उपलब्ध करा रहा है और सामाजिक क्षेत्र की श्रेष्ठ नीतियों से नागरिकों का सशक्तिकरण कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में देश में जिस गति से विकास हुआ है उसे देखकर पूरी दुनिया अचंभित है।
आने वाले 10 साल और भी फास्ट ग्रोथ के होने वाले हैं। सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग तक, ग्रीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल तक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की नई गति दुनिया के विकास का अध्याय लिखेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस वैश्विक समृद्धि में नई ऊर्जा लाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं।
ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी।
श्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस ने कजान तथा येकातरिनबर्ग में नए वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय किया है। इससे दोनों देशों के बीच यात्रा और व्यापार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज मॉस्को में 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के दौरान श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा करेंगे। वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी दृष्टिकोण साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के छात्रों से मानवता और राष्ट्र के लिए अपनी शिक्षा और ज्ञान का इस्तेमाल करने को कहा है। आज भुवनेश्वर में 13वें स्नातक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस संस्था के स्नातकों को बधाई दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने छात्रों को प्रेरणा देते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हुए देश के लिए प्रशंसा अर्जित करें।
आप एक अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थान से उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जहां भी कार्यरत रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठता के सर्वोत्तम स्तर प्राप्त करेंगे। मुझे आशा है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करने के साथ साथ अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन भी पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ करेंगे।
राष्ट्रपति मुर्मू पुरी में रथ यात्रा और अन्य समारोह में हिस्सा लेने के लिए शनिवार से अपने गृह राज्य ओडिशा की 4 दिन की यात्रा पर हैं। वे आज शाम दिल्ली लौट आएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद हाथरस भगदड़ मामले में 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। विशेष जांच दल ने आज अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया है कि घटना के पीछे का प्रमुख कारण कार्यक्रम आयोजक की लापरवाही है। रिपोर्ट के आधार पर हाथरस जिले के जिला उपायुक्त सीओ और तहसीलदार सहित 6 लोगों को निलंबित किया गया। रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार बताया गया है। 2 सदस्यों वाले विशेष जांच दल ने यह भी कहा है कि हादसे में षड्यंत्र से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए गहन जांच की जरूरत है। कार्यक्रम आयोजक ने एकत्रित भीड़ के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि जिन राज्यों में गठबंधन की सरकार नहीं है वे उन राज्यों में पीड़ितों से मिल रहे हैं, जबकि जहां वे सत्ता में हैं उन राज्यों को नजरअंदाज कर रहे हैं। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की निंदा करते हुए कहा कि श्री गांधी हाथरस और अन्य स्थानों का दौरा करते हैं लेकिन तमिलनाडु का नहीं, जहां अवैध शराब के सेवन से कई लोगों की मौत हो गई।
डीएमके गवर्नमेंट द फेलियर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड ऑलमोस्ट द अट्रॉसिटी अगेंस्ट द दलित्स आर इंक्रीज डे बाय डे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दे डिडंट विजिट देयर। राहुल गांधी इज गोइंग टू हाथरस और इज गोइंग टू समवेयर, व्हाई ही डोंट नो वे टू तमिलनाडु।
सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय सचिव राजेश अग्रवाल ने आज कहा कि रोजगार, शिक्षा और सहायक प्रौद्योगिकी दिव्यांग लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए 3 स्तंभ हैं। सुलभ और सहायक प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने पर 6ठे सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि नियोक्ताओं को दिव्यांग लोगों की श्रेष्ठ योग्यताओं का उपयोग करना चाहिए।
ये एक अच्छी बात है कि अभी इंडिया में बड़ी कंपनियां हो, मिड साइज हो, छोटी हो, सभी पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। हमारे जो दिव्यांग यूथ हैं पूरा आपको फुल फ्लेज काम करके दिखाएंगे, बहुत अच्छी आउटपुट देके दिखाएंगे। इंडस्ट्री में अच्छा रिस्पांस आ रहा है और हमें पिछले 3-4 सालों में देखने को मिल रहा है कि सभी तरह की इंडस्ट्री चांस दे रही है।
बिहार में पूर्णिया जिले के रूपौली विधानसभा क्षेत्र में कल उपचुनाव होने वाला है। 11 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला लगभग 3,13,000 मतदाता करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की मंगलौर सीट और चमोली की बद्रीनाथ सीट के लिए उपचुनाव कल होंगे। बद्रीनाथ के 4 उम्मीदवार और मंगलौर जिले के 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पंजाब के जलंधर पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कल होने वाले उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के माचेड़ी इलाके में कल आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने आज एक बड़ा संयुक्त तलाश अभियान शुरू किया। इस मुठभेड़ में सेना के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे और 5 अन्य घायल हुए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आतंकवादियों द्वारा सेना के जवानों के काफिले पर किया गया हमला एक कायरतापूर्ण कार्य है जिसकी निंदा की जानी चाहिए और सख्ती से इसका जवाब देने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र इस कठिन समय में सेना के जवानों के परिवार के साथ खड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान मूसलाधार वर्षा हुई। मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी और दक्षिण मध्य क्षेत्रों सहित पटना, सीवान, गोपालगंज, सारण, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर और नवादा जिलों में अगले 24 घंटे के लिए तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बन गई है।
वाल्मीकि नगर गंडक बैराज और वीरपुर कोसी बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सुपौल जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति है। बघा स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। निचले इलाकों में बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पलायन करना पड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंडक और अन्य नदियों से बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
उत्तर प्रदेश में 6 जिलों के 200 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें अधिकतर तराई क्षेत्र के हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूल और कॉलेज आज बंद हैं। उधर असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 72 तक पहुंच गई है। राज्य में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सा सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन 27 जिलों में 22 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य के कुमाऊं के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और जमीनी निरीक्षण किया। 7 और 8 जुलाई को मूसलाधार बारिश के कारण ऊधम सिंह नगर और चंपावत जिलों के कुछ स्थानों पर जल भराव के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान मध्य, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल के ऊंचाई वाले इलाकों, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी 12 जुलाई तक तेज बारिश की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और ओडिशा में अगले 4 दिन हल्की से सामान्य वर्षा हो सकती है। इस बीच मुंबई में तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होने के एक दिन बाद आज मौसम में सुधार हुआ है। मध्य और पश्चिमी दोनों लाइनों पर ट्रेन सामान्य रूप से चल रही हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने 2012 ओलंपिक खेलों के पुरुष वर्ग के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के कांस्य पदक विजेता और 4 बार के ओलंपिक खिलाड़ी गगन नारंग को मिशन प्रमुख बनाया है। एक रिपोर्ट।
ओलंपिक खिलाड़ी गगन नारंग 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। वे MC मैरीकॉम की जगह लेंगे। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल और बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉ PT उषा ने बताया कि 6 बार की विश्व चैंपियन मैरीकॉम ने व्यक्तिगत कारणों से अप्रैल महीने में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मिशन प्रमुख एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है। प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले एथलीटों के हित को सुनिश्चित करना मिशन प्रमुख की जिम्मेदारी होती है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज चेन्नई में श्रृंखला के तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है सरकार का लक्ष्य अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस भगदड़ मामले में 6 अधिकारियों को निलंबित किया। बिहार के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में मध्य, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पेरिस ओलंपिक में गगन नारंग भारतीय दल के मिशन प्रमुख, पीवी सिंधु और अचंत शरद कमल उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक होंगे। और महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा तथा अंतिम T20 मैच आज शाम चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।